તારીખ 29/10/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 783 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 512
એમના ઉપર લખેલો પત્ર છે. પત્રમાં ઘણી સૂચનાઓ કરી છે જે સર્વ મુમુક્ષુઓને ઉપકારી થાય એવી છે. પત્રના મથાળામાં સૌભાગભાઈને નમસ્કાર કર્યા છે. શ્રી સૌભાગને નમસ્કાર. એમની યોગ્યતા, એમના ગુણો, એમના પ્રત્યે કેટલું બહુમાન હતું એ આગળના પત્રોમાં પણ પ્રદર્શિત થયું છે. અને એમના દેહાંત પછી પણ મથાળામાં સૌભાગભાઈને નમસ્કાર કર્યા છે. જ્ઞાનીઓં કો માન અપમાન કા પ્રશ્ન નહીં હોતા હૈ. એ મેરે શિષ્ય હૈ, ઇસલિયે વો મુજે નમસ્કાર કરે, મેં ઉસકો નમસ્કાર કૈસે કરું, વો વાત કી કલ્પના ગુરુ શિષ્ય કી કલ્પના વહાં નહીં રહેતી. વો તો જહાં જહાં ગુણ દેખતે હૈ વહાં વહાં નમસ્કાર કરતે હૈ. અપની પરિણતિ અંતર મેં ગુણ નિધાન કે પ્રતિ ઢલતી હૈ, ઝુકતી હૈ, તો ઓર જગહ ભી ગુણ દેખેગા વહાં વો નમસ્કાર કરેંગે. ગુણો સે મતલબ હૈ और इतिहास में तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि पुत्र को पिता नमस्कार करता है. अगर पुत्र गुणवान होता है तो पिता उसको नमस्कार करता है. धर्मात्मा छोटी उम्र के होते हैं, उससे बड़ी उम्र वाले भी उनको प्रणाम करते हैं. और बहन से स्त्री पर्याय में थे तो भाई लोग भी नमस्कार करते थे. तो वहां गुण देखा जाता है, दूसरी सब प्रकार की पर्याय गौण हो जाती हैं. श्री सौभाग की मुमुक्षु दशा तथा ज्ञानी के मार्ग प्रति के इसका अद्भुत निश्चय बारंबार स्मृति में आया करता है. पहला वचन क्या लिखा है कि हमको श्री सौभाग भाई के स्वर्गवास के बाद उसकी स्मृति होती है, उसका स्मरण आता है. स्मरण किसका आता है कि जिसके प्रति लगाव होता है उसका स्मरण आता ही है. तो हमको भी स्मरण आता है, सौभाग भाई का स्मरण हमको आता है. कृपालु देव के पवित्र ज्ञान में ये मति ज्ञान का भेद है. स्मृति है वो मति ज्ञान का भेद है. तो वो आत्मा कितना भाग्यशाली होगा कि जिसके स्मृति ज्ञान में मति ज्ञान में उनकी स्मृति बार 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 आया करती है. ऐसा नहीं है कभी आया नहीं, बार बार आया करती है. और किस प्रकार से आती है कि उनकी जो मुमुक्षु दशा है, ये उत्तम कोटि के मुमुक्षु थे, तो उनकी मुमुक्षु दशा का हमको स्मरण रहता है. और ज्ञानी के मार्ग प्रति चलने का उसका जो निश्चय था कि हमको ज्ञानी के मार्ग पर चलना है, स्वच्छंद से कहीं भी चलना नहीं है, इस विषय में उसका जो निश्चय था वो साधारण निश्चय नहीं था, अद्भुत निश्चय था. ऐसा कहा लिखा है. कैसा निश्चय था? अद्भुत निश्चय था कि हमको एक पैर क्या, एक इंच भी हमको मार्ग से बाहर चलना नहीं. जो ज्ञानी कहे उसकी आज्ञा आज्ञाधीन रूप से सिरोधार करके उन्हीं के मार्ग पर चलना है। ज्ञान दशा आखिरी दशा, वो आखिरी दिनों में ज्ञान दशा को प्राप्त हुए थे, सारा जीवन तो मुमुक्षु दशा में गया। और मुमुक्षु को उत्तम कोटि के मुमुक्षु की दशा विशेष उपकारी होती है, ये एक बात थोड़ी रहस्यभूत है। कभी कभी ज्ञानी से भी मुमुक्षु को उत्तम कोटि के मुमुक्षु की दशा विशेष उपकारी होती है, क्योंकि ज्ञानी का परिणमन सूक्ष्म है, मुनि का और सूक्ष्म है, अधिक सूक्ष्म है, और सर्वज्ञ परमात्मा जिनेन्द्र देव का इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो उसका परिचय होना कठिन है, पहचान होना उसका कठिन है, जबकि मुमुक्षु की दशा में स्थूलता है थोड़ी, वो जल्दी बाहर आ जाता है। ऊपर ऊपर के ज्ञानी धर्मात्मा अंदर में समाये हुए हैं, तो उसका परिणमन को पकड़ना थोड़ा आसान नहीं है, कठिन है, थोड़ा कठिन है, नहीं पकड़ सके वो बात नहीं है। लेकिन उत्तम कोटि के जो मुमुक्षु हैं, इनकी दशा तो सीधी दिखने में आए, इनका फोर्स, उनका पुरुषार्थ का उपाय, उनकी मुमुक्षुता, ये सब इनके जो गुण हैं, तो आसानी से समझ में आता है। और नीचे वाले मुमुक्षु को वही मुमुक्षु दशा में प्रवेश करने का प्रयोजन है, उनका इंस्टेंट प्रयोजन तो वो है कि सामान्य मुमुक्षु में से वो उत्तम कोटि के मुमुक्षु बने, फिर तो ज्ञानी बाद में ज्ञानी बनेंगे। तो इसलिए ज्ञान दशा का वर्णन नहीं करके मुमुक्षु दशा की बात लिया है कि आप वैसे मुमुक्षु हो जैसे सुभाग भाई मुमुक्षु थे, वैसे मुमुक्षुता आप लोग भी प्राप्त करें। हाँ, वो ज्ञानी को पहचान सकता है। कहाँ से? परिचय से।
तो नहीं,
अगर ज्ञानी के प्रति तो 335 में व्याख्या दिया है, जो मात्र ज्ञानी को चाहता है, ज्ञानी को पहचानता है और उसकी भजना करता है, वह ज्ञानी होने योग्य है और उसको उत्तम कोटि का मुमुक्षु कहना योग्य है। 335 में बात आई कि नहीं आई? कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए। जो बात हमारे सामने आ गई है तो ऐसी ऐसी बात पर चौंटनी चाहिए, वो विस्मरण नहीं होनी चाहिए। बात समझें और विस्मरण कर ले, क्या फायदा? जब हमको उत्तम कोटि के मुमुक्षु में प्रवेश करना है तो हमारे प्रयोजन की बात हम क्यों विस्मरण कर लेते हैं? बात तो अनेक बार आई है, एक बार तो नहीं आई। एक बार आए तो भी जाए नहीं ऐसी बात पर, ऐसी बात है ये। तो अनेक बार भी आए और हमारा ध्यान से उतर जाती है, इसका मतलब क्या? कि हमारे हमको उत्तम कोटि में प्रवेश करना है, ऐसा जो हमारा प्रयोजन है वो प्रयोजन पर हमारी पकड़ नहीं है, ऐसा सूचित होता है उसमें। ऐसी बात तो ऐसी छोटे कि विस्मरण हो गए नहीं। तो ऐसी भक्ति किसी को ही प्राप्त होती है, सबको नहीं होती है, इसलिए उसको उत्तम कोटि मिलेगी। भाववासन में तो बहुत आखिरी दिन में आए थे, ज्ञान दशा के पहले एक हफ्ता पहले तो भाववासन में आए थे, लेकिन कृपालु देव के प्रति उनकी जो भक्ति और उनके ही कहे हुए मार्ग पर चलने का इसका अद्भुत निश्चय, इनकी योग्यता में ऐसा अद्भुत निश्चय था, कि कृपाल देव की आत्मा में वो बात छोट गई, ऐसी छोट गई कि उसके स्वर्गवास के बाद भी उसका स्मरण बार बार आता है। तो क्या मुमुक्षुता थी, क्या इसका ज्ञानी के मार्ग पर चलने का अद्भुत निश्चय था, गजब का निश्चय था। वो हमको बार बार स्मृति में आया करता है।
ज्ञानी का मार्ग में क्या करा, ज्ञानी का मार्ग मतलब ज्ञानी पुरुष ही मेरा उद्धार करेंगे,
नहीं ज्ञानी, ज्ञानी जो मार्ग पर चलते हैं एक बात है, और दूसरा जो मार्ग वो दिखाते हैं हमको, बताते हैं कि ऐसा होना, बस ये हमारे लिए मार्ग है। मुमुक्षु अपनी योग्यता को नहीं जानता है क्या, ऐसा मुमुक्षु को भान होना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि मेरी योग्यता कैसी है। ज्ञानी पुरुष के लक्ष्य में है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं नहीं जानता। अब वो जो कहे वैसा मुझे करना है। जैसे गंभीर रोग हुआ है, जीवलेन रोग कहता है जिसको, कि अगर सावधानी रख करके सुधार नहीं हुआ तो मृत्यु निश्चित है ये रोग में, तो इसलिए बचना हो तो पूरी सावधानी से जैसा भी वैद्य डॉक्टर कहे वैसा ही हमको करना पड़ेगा। टोटली सरेंडर होता है कि नहीं होता है, वो बोलेगा कि हार्ट को काट ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो देखो कि तुम्हारा हार्ट को निकाल करके टेबल पर रख देंगे एक दफे तो हम लोग, फिर ज्वाइंट करेंगे, एक दफे तो काटना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करेंगे। आप जो जैसा कहो वैसा, क्या कहते हैं, आप जो कहो हमको करना है। कितनी छड़ी लेके काटेंगे, छड़ी बतावे तो ये छड़ी से काटेंगे, जो छड़ी लेना है वो ले लो। अपने को एक शर्त चलती है इसमें है? कि जैसा कहे वैसा करना पड़ता है। तो ये तो भवरोग है, अनंत काल का क्रॉनिक भवरोग है, भयंकर, एक मरण नहीं अनंत मरण को प्राप्त कराने वाला रोग है। उसके लिए ज्ञानी को पूरी शरणागति के बिना, यानी कि शरणागति में पूरे पूरा ये बिना ये रोग मिटे ऐसा बनता नहीं है, क्योंकि कदम कदम पर जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जरूरत लगती है, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना, मैं तो नहीं जानता मेरी योग्यता क्या है कैसी है। जिसको ऐसा नहीं होता है उसको स्वच्छंद से वो चलता है, वो धर्म के क्षेत्र में स्वच्छंद से धर्म साधन करता है, ये बात साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक साबित हो जाती है। तो ये वचनामृत लिख करके कृपालु देव ने सभी मुमुक्षुओं को सूचना दिया है, ऐसी बात है। अब सत्पुरुष की महिमा करते हैं कि सर्वजीव सुख को चाहते हैं, परंतु कोई विरला पुरुष यह सुख का यथार्थ स्वरूप जानते हैं। ऐसे तो जगत के सर्वजीव सुख को ही चाहता है, देवलोक के देव भी सुख के लिए प्रयत्नवान है, चक्रवर्ती भी सुख के लिए प्रयत्नवान है, और कूड़ा का ढेर में रहने वाला ये भुंड भी सुख के लिए ही प्रयत्नवान है, वो भी विष्ठा खाता है तो सुख के लिए खाता है, वो भी जीव है लेकिन सुख के लिए विष्ठा खाता है, और वो हालत हमारी हो चुकी है। तो सुख के तो सब चाहते हैं, लेकिन कोई विरला पुरुष यह सुख को यथार्थ स्वरूप से जानते हैं कि वास्तव में सुख का स्वरूप क्या है, सुख क्या चीज है और कहाँ है और कैसे प्राप्त होता है। जन्म मरण आदि अनंत दुख का आत्यंतिक माने सर्वथा क्षय होने का उपाय अनादिकाल से जीव को जानने में नहीं है। जन्म मरण आदि अनंत दुख का सर्वथा क्षय होने का उपाय है। लोग कहते हैं कि संसार में मृत्यु का कोई इलाज नहीं, सबको मृत्यु के शरण में जाना ही पड़ता है, वहां अशरण है हम। तो यहां ज्ञानी कहते हैं कि नहीं, इस मृत्यु पर भी मृत्युंजय हो सकता है। हम मृत्युंजय का जाप कराते कि नहीं कराते? कोई को गंभीर बीमारी आती है तो ये ब्राह्मण अंधश्रद्धा में ले जाते हैं कि भाई उसको बचाना हो तो मृत्युंजय का जाप कराओ, फिर भी वो बचने वाला नहीं है, वो जाप बाप तो दहम्बक है। वास्तव में जिनेन्द्र का मार्ग है, ज्ञानी का मार्ग है, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करा के निर्वाण पद को प्राप्त कराता है। जन्म मरण आदि अनंत दुख का आत्यंतिक क्षय होने का उपाय अनादि काल से जीव के जानने में नहीं है। वो तो बिल्कुल अनादि से जानता ही नहीं कि कैसे मृत्यु को पार करके निर्वाण पद को प्राप्त हो सके। यह उपाय जानने की और करने की, ये उपाय कैसा है वो जानने की अंतर जिज्ञासा, पहले जिज्ञासा में ले गया और फिर जिज्ञासा पूर्वक जाना, उसको अंगीकार करने की, उपाय को प्राप्त करने की, सच्ची इच्छा उत्पन्न होने से जीव सच्ची इच्छा उत्पन्न होने पर यदि जीव सत्पुरुष के समागम के लाभ को प्राप्त हो तो वह यह उपाय को जान सकता है और यह उपाय को उपासना करके सर्व दुख से मुक्त भी हो जाता है। देखो क्या बात लिया कि ये जानने की सच्ची इच्छा उत्पन्न ही है। आप पहली बात शरत है, प्रमाणिकता से ईमानदारी से जन्म मरण आदि दुख मिटाने की इच्छा है कि नहीं है? अंतर से वो भावना इच्छा जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है वो देख लो पहले। अगर ऐसी परिस्थिति में तुम आए हो और जो सत्पुरुष का समागम मिले तो उपाय को जानते हैं तो बताएंगे, और तुमको भावना है सच्ची इच्छा है तो उपासना भी करोगे, और ये दो बात बनेगी तो तुम्हारा अवश्य छुटकारा हो ही जाएगा, गारंटेड बात है। नहीं छुटकारा हो गए वो भी बात नहीं है। बस ये शॉर्टेस्ट कट है। बाकी दूसरे साधन के चक्कर में पड़ना ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करें, हमको मुक्त होना है तो हम घर बार त्याग करके दीक्षा लेकर के जंगल में चले जाए क्या? ऐसा नहीं बोला कि हम तपश्चर्या में लग जाए क्या? वो भी नहीं कहा कि हम शास्त्र पढ़ने को लगे क्या? वो भी नहीं कहा। अगर मुक्त होने का, जन्म मरण का क्षय करने का इच्छा, सच्ची इच्छा हो और सत्पुरुष का योग मिले तो उपाय समझ में आएगा, उसकी उपासना भी होगी और अवश्य मुक्ति होगी।
अरे कोई माधव जो ग्राहक को देते हैं,
हाँ,
ग्राहक बनने की बात।
પાનું 171 ગુજરાતીમાં अनादिकाल से यहाँ थे, अनादिकाल का महाशत्रु रूप राग द्वेष और मोह के बंधन में जीव अपने स्वयं के संबंध में विचार कर सका नहीं। मनुष्यत्व, आर्य देश, उत्तम पूर, शारीरिक संपत्ति, ये सब अपेक्षित साधन है। और मूल साधन क्या है? अंतरंग साधन तो ये सब बाहर के साधन है, अपेक्षित साधन है मैंने बाह्य साधन है। और अंतरंग साधन मात्र मुक्त होने की सच्ची जिज्ञासा यह है। हाँ, अंतरंग साधन बिना वो बाह्य साधन कोई काम का साधन रूपे सब साधन बंधन थया रहो न कोई उपाय, ये बंधन थवाना। अंदर अंदर थी मुक्त थवानी साची जिज्ञासा जोईए। बस आ एक नीम का पत्थर है, अंतरंग से मुक्त होने की सच्ची भावना, सच्ची जिज्ञासा, सच्ची इच्छा अपने को है कि नहीं है उतना ही देखना है। अगर है तो उसका रास्ता है, नहीं है तो फिर कोई रास्ता नहीं है, सब साधन बेकार समझो। जे आत्मा मुक्त हुआ है, जो जो आत्मा मुक्त हुआ है, वे आत्मा कुछ स्वच्छंद वर्तना से मुक्त नहीं हुए हैं, परंतु आप तो पुरुष के बोधे हुए, बोधित किए हुए, उपदेशित उपदिष्ट मार्ग के प्रबल अवलंबन से मुक्त हुआ है। अवलंबन से नहीं लिया, चुस्त अवलंबन। क्या हमको एक सेंटीमीटर भी हेरफेर करना, एक मिलीमीटर भी हेरफेर करना नहीं है, अपना घर का कुछ लगाना नहीं है, ऐसा तो मुक्त हो, प्रबल अवलंबन से मुक्त हुए हैं आप तो पुरुष को, ज्ञानी पुरुष को, एक ही बात है। जगत माथी जे परमाणु કઈ આવડતું બીજું કઈ પૂર્વકર્મ ના આધારે તેનું સગળું વિચારવું છે એમ સમજી પર આ વાત, કેમ કે આપણે માનીએ છીએ અથવા કેમ વર્તે છે જગતને દેખાડવાની જરૂર નથી, પરંતુ આત્મા કો ઇતને હી પૂછને કી જરૂર હૈ કે જો મુક્તિ કો ચાહતે હૈ તો સંકલ્પ વિકલ્પ રાગ દ્વેષ કો છોડ દે, ઓર ઉસકો છોડને મેં તુજે કોઈ આપત્તિ હો તો બોલ, કહે બતા, यह अपने आप मान जाएगा और अपने आप उसको छोड़ देगा। अपने आप को पूछने की जरूरत है, यथार्थ भूमिका की बहुत बातें किया है। ऐसी सच्ची इच्छा भी, तो कोई को ये प्रश्न हो सकता है कि हमको ऐसी सच्ची इच्छा नहीं हुई, अब क्या करें? तो इसका भी उत्तर है, बात तो अच्छी है कि ऐसी सच्ची इच्छा उत्पन्न हो और सत्पुरुष का योग हो तो निवेड़ा हो जाएगा, लेकिन मूल में हमको ऐसी सच्ची इच्छा अभी तक हुई नहीं है। अनेक प्रकार के संसार की इच्छा होती है, संसार के संयोग की, पैसा ज्यादा कमाए, परिवार वाले को सुखी करें, वो इसका ऐसा करे, उसको वैसा करे, वो ठीक करे, वो ठीक करे, कोई कोई किसी को संस्था चलानी है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, ये सब होता है, इसका क्या करे? और सच्ची इच्छा उत्पन्न नहीं है तो कैसे हो, ऐसी भी एक समस्या है। तो इसका भी रास्ता है कि ऐसी सच्ची इच्छा भी बहुत करके जीव को सत्पुरुष के समागम से ही प्राप्त होती है। ठीक, ये लाभ भी सत्संग से होता है, और जगह से ये इच्छा उत्पन्न होने वाली नहीं है। ऐसी सच्ची इच्छा भी बहुभाग जीव को सत्पुरुष के समागम से ही प्राप्त होती है। वैसा समागम, यह समागम की पहचान और निर्दिष्ट मार्ग की प्रतीति और उसी पर चलने की प्रवृत्ति जीव को परम दुर्लभ है, उत्तरोत्तर दुर्लभ है, क्रम लिया है। ऐसा सत्पुरुष का समागम सुलभ है नहीं। जगत में पैसा, संपत्ति, कुटुंब, परिवार, सत्ता, अधिकार, ये सब सुलभ है, सत्पुरुष का योग और समागम सुलभ नहीं है, क्योंकि उसका प्रमाण कम है। और चीज जगत में बहुत है तो मिल जाती है, लेकिन सत्पुरुष तो बहुत है नहीं। करोड़ों में क्या, अरबों में कोई एक है, करोड़ों में क्या, अभी तो अरबों में कोई एक है, तो उसका तो छत नहीं है, अछत है, इसलिए वो दुर्लभ है। वैसा समागम दुर्लभ है, और उस समागम हुए तो उसकी पहचान दुर्लभ है। समागम मिले तो भी उसकी पहचान, क्योंकि जीव अपनी दृष्टि से स्वच्छंद से चलता है बहुत, और पहचान होने के बाद वो मार्ग पर चलने के लिए बहुत सी तकलीफें आती है, लड़ाई करनी पड़ती है अंदर में। वो मार्ग है, वो मार्ग पर चलने के लिए आसानी से चल सकता नहीं है, बहुत से कठिन लगता है, क्योंकि अपने आगे वाले पूर्वग्रह सब छोड़ना पड़ता है, प्रकृति को भी छोड़ना पड़ता है। जो प्रकृति के वश है, जो प्रकृति आत्मा हो गई है, वो प्रकृति को दुश्मन समझना पड़ता है, और जिसके अधीन हो जाता है उसके सामने मोर्चा खड़ा करना पड़ता है। तो उसके दर्शाए हुए मार्ग पर चलना या उसकी प्रतीति आना, विश्वास आना कि यही मार्ग है, मेरे लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, वो कहते हैं मुझे वही मुझे करना है, मेरे लिए दूसरी कोई बात है ही नहीं, आगे के पीछे की सब बात छोड़ दे, नक्शा भले पूरा समझ लिया हो, अभी मुझे क्या करना है, कभी वो करना है, बस वही करना है, ऐसा विश्वास आए और चलने की प्रवृत्ति जीव करे, ये सब उत्तर उत्तर बहुत दुर्लभ है। अगर प्रतीति पूर्वक चलने का प्रयत्न होगा उसका तो निवेड़ा हो ही जाएगा, उसमें दो मत नहीं है। वो जीव को परम दुर्लभ है। मनुष्यपना एक तो दुर्लभ है। मनुष्यपना क्या, शास्त्र में तो भगवान ऐसा कहते हैं कि एक इंद्रिय में से दो इंद्रिय होना मुश्किल है, निगोज में से निकल करके ईयड़ होना मुश्किल है। मनुष्यपना तो बहुत दुर्लभ है, फिर भी मिल गया है तो जीव को इसकी कीमत नहीं आती है, ये इनके लिए बहुत नुकसान का कारण बनेगा। अगर इसकी कीमत नहीं आती है तो बहुत नुकसान का कारण ये बनेगा, क्योंकि उपेक्षा, मनुष्यपना की उपेक्षा करेगा, टाइम फालतू का खराब करेगा। मनुष्यपना और मनुष्यपने में ज्ञानी के वचनों का श्रवण को प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। देखो अरबों मनुष्य है, ज्ञानी के वचन किसको मिलते हैं? उनके कहे हुए मार्ग में प्रवृत्ति होना परम दुर्लभ है, ऐसा श्री वर्धमान स्वामी ने उत्तराध्ययन के तृतीय अध्ययन में उपदेश किया है। उत्तराध्ययन में वो बात भगवान ने कही है, ये जो 12 है ना उसमें एक उत्तराध्ययन भी है अंग में, उसमें वो बात आई है। ये मूल बातें हैं, ये बात जो कही है वो मूल बातें हैं, भगवान के श्रीमुख से निकली हुई है मूल बातें हैं। शास्त्र किसी के भी हो इसमें कुछ न कुछ मूल बातें होती है, क्योंकि यहाँ से ही सब निकले हैं, निकले तो वहां से निकले हैं। हाँ, अनंत काल से अजीन से निकला, अनंत अनंत जीव ऐसे हैं, एक अनंत नहीं, अनंत अनंत जीव अभी भी ऐसे हैं कि जो निगत से बाहर ही नहीं निकले, अनंत काल से अनंत दुख में सबड़ते हैं अभी भी, बहुत मुश्किल है वहां से निकलना। दो इंद्रिय होना मुश्किल है, अपन तो पंचेंद्रिय हो गए, यानी कि वचन का सीधा श्रवण भी हुआ, लेकिन अभी तक विश्वास आया नहीं। यानी तो कहते हैं कि देख तेरा सुख कहीं नहीं है, न मकान में है, न कुटुंब में है, न पैसा में है, न कोई खाने पीने में, कोई पूछियों में है, कि कहीं तेरा सुख नहीं है। विश्वास आया क्या? तेरा सुख तेरे में है, विश्वास आया क्या? बस प्रतीति होना और वो बताए वो उपाय करना, मार्ग में नहीं उपाय, वही उपाय को करना, ये परम दुर्लभ है। मनुष्य होना दुर्लभ है, बाद में श्रवण मिलना दुर्लभ है, श्रवण होने पर प्रतीति आना दुर्लभ है, और विश्वास आने पर उसका पुरुषार्थ होना इससे भी दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभता की बात भगवान श्री वर्धमान स्वामी ने उत्तराध्ययन के त्रिजे अध्ययन में, त्रिजा अध्ययन में बात किया था, वो कृपाल देव ने सब पढ़ लिया था सब पढ़ लिया था, तो कौन सा शास्त्र में कौन से अधिकार में क्या कहाँ कहाँ मूल बात रही है तो उनके ध्यान में थी। हाँ हाँ चला दिगंबर में पढ़ से कैसे अच्छा तो मूल है उत्तराध्ययन दसवीं तो मूल मूल नाम से जे गौतम स्वामी रचा मूल नाम से बता मूल नाम पी अंदर बीजा श्लोक पोता नाखा बीजे बात है मूल सूत्र आचारांग स्वयंडांग बधा मूल नाम है जे गौतम स्वामी रचना करी मूल नाम है एम अमुक अमुक बात मूल रही गई बाकी फेरफार थो मूल बात साथ ज्ञाओ ने संबंध है प्रत्यक्ष सत्पुरुष का समागम। देखो क्या लिखा है, प्रत्यक्ष सत्पुरुष का समागम और उसके आश्रय में विचरते हुए मुमुक्षुओं को मोक्ष संबंधी सभी साधन अल्प प्रयास से और अल्प काल में बहुत करके प्राय सिद्ध होता है, मैंने प्राप्त हो जाता है। ये शॉर्टेस्ट कट है, सीधा रास्ता है कि अगर प्रत्यक्ष सत्पुरुष का समागम मिल जाए और उसके आश्रय में मुमुक्षु जीव का विचरना हो जाए और फिर कोई उनको तकलीफ पड़ने वाली, जो भी तकलीफ आएगी आसानी से दूर हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी तकलीफ आएगी तो भी आसानी से दूर हो जाएगी, ऐसा बनता है प्रत्यक्ष समागम में ये बात बनती है बहुत आसानी से। सबसे कोई कठिन में कठिन विभाव है तो दर्शन मोह वाला है मिथ्यात्व नाम का, उसको भी वो कमजोर कर देता है, मुमुक्षु की भूमिका में उसको एकदम कमजोर, और ये सत्पुरुष के आश्रय में कमजोर होना बहुत आसान है, ये इसका सुगम मा सुगम और श्रेष्ठ मा श्रेष्ठ उपाय है। बात ध्यान पर आनी चाहिए, इतनी सी बात है, अगर ध्यान से वो बात उतर गई तो फिर रास्ता मिलना बहुत कठिन है।
सत्पुरुष के आश्रय में, सत्पुरुष
हाँ शरीर के बात क्या है, पास तो चींटियां भी रहती है घर में, मक्खियां भी होती है, होती है कि नहीं होती है तो उनके माथे पे बैठ जाती है मक्खी तो हाँ पास का क्या मतलब, क्षेत्र के पास की बात नहीं, उनके आश्रय भावना में, आश्रय भक्ति में रहे, क्या नाम है, आश्रय भक्ति, उनको बहुमान पूर्वक भक्ति पूर्वक इनके आश्रय में चरण में रहना है, आश्रय भाव है कि हमारा दूसरा कोई शरण है
नहीं,
ऐसे आश्रय भावना में है तो उनकी आज्ञा को वो गिरने देगा नहीं, उसका जो भी कहेगा उसका अमलीकरण करेगा वो, क्योंकि उसके लिए वो मृत्युंजय का मंत्र है, उसकी आज्ञा ही मृत्युंजय का मंत्र है। विश्वास आना चाहिए, ऐसा ऐसा विश्वास आना चाहिए, विश्वास आएगा तो प्रवृत्ति कर सकेगा, विश्वास नहीं आएगा तो प्रवृत्ति करने का तो पुरुषार्थ होगा नहीं, शंका रहेगी उनको ऐसा होगा या दूसरी कोई बात होगी, ऐसा भी प्राप्त होगा दूसरे मार्ग से भी प्राप्त होगा, ऐसा करे तो वैसा करे तो अन्य अन्य मार्ग ढूंढने का उसको तर्क वितर्क होता रहेगा, ये स्वच्छंद से चलता है, उसी का नाम ही स्वच्छंद है। वो तो लगे कि भव समुद्र के मध्य में मैं डूब रहा हूं और कहीं किनारा दिखता नहीं है, अब तो कोई ऊपर से विमान आकर के ले जाए तो दूसरी बात है, बाकी तो कहीं सैकड़ों माइल तक कोई होड़ी नहीं दिखती, दूसरा बात तो क्या दिखे, कैसे बचेगा, बचने का कोई उपाय नहीं दिखे, ऐसे भव समुद्र में सत्पुरुष का योग होता है तो समझ लेना चाहिए कि आकाश में से विमान आया और बोला कि ये रस्सी में कुर्सी भेजी है तुम बैठ जाओ, हम रस्सी से ऊपर खींच लेते हैं, वो खींचना हमारा काम है, कुर्सी भेजना भी हमारा काम है और खींचना भी, तुम बैठ जाओ, तो फिर बैठने वाले को देखता है कि कुर्सी में कोई गड़बड़ तो नहीं, ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, अच्छी तो है, शोभा वाली तो है, इसको बचने का फिर कोई उपाय, क्योंकि वो शंका करता है, वो कुर्सी में शंका करता है, अरे भाई ये मिले क्या कहां से ये बात, यहां ऐसे भव समुद्र में डूबते हुए को विमान आकर के कुर्सी नीचे उतारे वो बात बने कहां से, वो डूब रहा है उसका भान नहीं है कि मैं डूब रहा हूं, पर बहु भाग ऐसा होता है, इसमें भी कोई सत्पुरुष का विरोध करता है निंदा करता है तब तो ऐसा लगता है कि अरे रे क्या करता है बेचारा, करता है कराता है, करने वाले की अनुमोदना होती है, बहुत दूर चले जाते हैं वहां मार्ग से, बहुत दूर चले जाते हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष सत्पुरुष के समागम में और उसके आश्रय में विचरते हुए मुमुक्षुओं को मोक्ष संबंधी सभी साधन अल्प प्रयास से प्राप्त होता है और अल्प काल में उसकी सिद्धि हो जाती है, परंतु यह समागम का योग की प्राप्ति दुर्लभ है, ये योग आसान नहीं है और ये योग बहुत दुर्लभ है, इतना सस्ता भी नहीं है, उसकी प्राप्ति होनी परम दुर्लभ है, यही समागम के योग में मुमुक्षु जीव का निरंतर चित्त वर्तता है, उनको तो चित्त में ही कि मुझे तो ये समागम में रहना है, योग में भी उसका चित्त वहां वर्तता है और संयोग में तो उसका रुचि का संयोग है तो वो तो छोड़ना चाहेगा नहीं। योग में वियोग का दुख भी होगा और चित वहां ही रहेगा, तो मुझे समागम में रहना है, मुझे समागम में रहना है, मुझे दूर रहना नहीं है। सत्पुरुष का योग प्राप्त होना तो सर्वकाल में जीव को दुर्लभ है, सर्वकाल में ने चतुर्थ काल में भी दुर्लभ है। जो काल में बहुत सत्पुरुष पैदा होते थे वैसे काल में भी योग प्राप्त होना दुर्लभ है, उसमें भी ऐसे वर्तमान दुष्म काल में तो क्वचित ही यह योग बनता है, ऐसा योग तो क्वचित ही बनता है, हर हमेशा मिलता रहे ऐसा बनता
नहीं है,
क्योंकि प्रारब्ध कर्म सबका अलग अलग है, एक से एक सा प्रारब्ध कर्म भी होता नहीं। हाँ एक बात जरूर है कि तीव्र भावना होती है तो कर्म रेखा को भी बदलना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन वो तो एक्सट्रीम पॉइंट की भावना होवे तब तब की बात है। क्या कहते हैं, सत्पुरुष का योग प्राप्त होना तो सर्वकाल में जीव को दुर्लभ है, उसमें भी ऐसे दुष्म काल में तो क्वचित ही यह योग बनता है। विरला ही सत्पुरुष विचरता है, कोई विरला जीव ही सत्पुरुष होता है, अरबों में कोई एक है। यह समागम का लाभ अपूर्व है ऐसा जान करके जीव को मोक्ष मार्ग की प्रतीति करके यह मार्ग का निरंतर आराधन करना योग्य है। क्या कहते हैं कि यह समागम का लाभ अपूर्व है, इसका बहुत मूल्यांकन होना चाहिए, और ऐसा जान करके जीव को मोक्ष के मार्ग की प्रतीति करनी चाहिए और उस मार्ग का निरंतर आराधन भी करना चाहिए। यानी समागम से संतुष्ट हो जाए वो बात नहीं है, समागम में रहेगा तो उसको विश्वास है कि नहीं है, और विश्वास है तो उसकी उपासना है कि नहीं है, वो बात सब अवश्य होनी चाहिए। यह समागम का योग न हो तब, क्या ऐसे समागम का योग न हो तब आरंभ परिग्रह प्रति की वृत्ति को कम करके, ओसरा मीनू हिंदी शू कर
हिंदी
वृत्ति को हटाकर, ठीक ओसरा भी कैसे होता है क्या है कि जैसे ये समुद्र में आता है ना, भरती तो ज्वार भाटा को कहते हैं, फिर जो ओट आता है, ओट आता है तो पानी ऐसे ऐसे ओसरता है चला जाता है, ऐसे वृत्ति को ओसरा भी तो ओट के ओट के भाव में मिलता है कि स्वतः वृत्ति कमजोर हो जाए, स्वतः जो वृत्ति है वो हटने लगे।
ज्वार तो कहते हैं
भरती को ज्वार भाटा कहते हैं,
ज्वार कहते हैं, भाटा
कहते हैं वो श्रमी, ओट को भाटा कहते हैं,
ज्वार
भरती ओट दोनों का बराबर। हाँ ऐसे आरंभ परिग्रह के प्रति जो वृत्ति है उसकी एकदम जैसे पानी का ओट आवे ऐसे वृत्ति में भी ओट आनी चाहिए। समागम का योग न हो तो ऐसा नहीं होना कि चलो महीना दो महीना समागम नहीं मिलने वाला है अब पूरा धंधा कर लो, पूरा सब काम कर लो, जितना भी अनुकूलता के जितने भी काम हो ने वो जल्दी जल्दी अच्छे से अच्छा कर लो, अभी फिर समागम के योग में अपने को फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ वो जैसे गुरुदेव विहार में जाते थे, हाँ चार पांच महीना नहीं, चार पांच महीना बस चले जाओ अपने घर पे और जो भी पूरे रस से लग जाओ, ऐसा नहीं होना। जब जब समागम का योग न हो, आरंभ और परिग्रह पर के हमारी वृत्ति एकदम निरस होनी चाहिए। ये तो अधिक वैराग्य के दिन है। अरे हमारे पुण्य ऐसे कम है तो हमको अभी समागम मिल रहा नहीं है, तो खाना कैसे अच्छा लगे, अनुकूलताएं कैसे अच्छी लगे, कि हमको कोई बात सुहाती नहीं है, कहीं भी गमे ही नहीं, कोई चीज गमे नहीं, ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। सब वृत्ति को निरस करके सत्शास्त्र का परिचय विशेष रूप से कर्तव्य है। प्रत्यक्ष समागम नहीं मिले तब सत्शास्त्र का परिचय विशेष रूप से करना। पारंपरिक प्रति की वृत्ति को परीक्षण करके, परीक्षण करते करते, क्षय करते करते सत्शास्त्र का परिचय विशेष करके कर्तव्य है। व्यावहारिक कार्यों की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो, नहीं चले, ऐसी कोई परिस्थिति हो, व्यवसाय आदि करना करे बिना चले नहीं, ऐसा करना पड़ता हो, तो भी उसमें से वृत्ति को निरस करने का जो निरस करने का जो चाहता है, जो जीव चाहता है, वो उसको फिक्की कर सकती है। मौली मैंने फिक्की, उसकी वृत्ति को फिक्कापन करना जो चाहता है वो उसको फिका कर सकता है। तो वृत्ति फिक्की हो जानी चाहिए। रस से, उमंग से, उत्साह से सांसारिक प्रवृत्ति करना वो जहर खाना बराबर है। उत्साह परीक्षण होना चाहिए। सत्समागम में तो सत्समागम का बल मिलता है, लेकिन सत्समागम नहीं होता है तो आत्मबल के सिवा वहां कोई दूसरा साधन नहीं है। व्यावहारिक कार्य की प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो भी उसमें से वृत्ति को एकदम फिक्की करने की जो जिसको इच्छा है, जो जीव को इच्छा है, वह जीव उसको फिक्की कर सकता है। और सत्शास्त्र का परिचय के लिए बहुत अवकाश प्राप्त कर सकता है, तो फिर उनको प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी। वृत्ति कम होगी तो प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी, तो उनको सत्शास्त्र का परिचय करने का समय भी अधिक बचेगा। ऐसे तो निवृत्ति ले सके तो अच्छी बात है, लेकिन निवृत्ति लेने की परिस्थिति नहीं हो तो भी प्रवृत्ति को कम करके सत्शास्त्र का परिचय और सत्समागम में रहना उचित है। लेकिन उत्साह से, रस से आरंभ परिग्रह की प्रवृत्ति हुए तो उसमें तो जीव को उतना आवरण आएगा, उतना आवरण आएगा कि मोक्ष मार्ग पाने में उसके वृत्ति के अंदर की कठिनाई बढ़ जाएगी। अब कहते हैं ना लोग, क्या करें, पुरुषार्थ नहीं चलता है। बात तो समझ में आती है, पुरुषार्थ नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? कि बहुत रस लिया है, इतना सांसारिक कार्यों में उदय में रस लिया है कि हीन सत्व हो गया है। कैसा हो गया है? हीन सत्व हो गया है। पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसा मालूम पड़े तो भी उसका पुरुषार्थ चलता नहीं है। ये बात हो गई। आरंभ परिग्रह पर से जिसकी वृत्ति खेद को प्राप्त हुई है, उत्साह तो छोड़ो, चिंता तो छोड़ो, खेद हुआ है कि हमारा परिणाम क्यों बार बार जाता है, आरंभ परिग्रह पर हमारे परिणाम संयोग के विषय में क्यों बार बार लगता है, और लगेगा तो भी प्रारब्ध में हो वही होगा, नहीं लगेगा तो भी प्रारब्ध में जो है वैसा होने वाला है, फिर हमारा परिणाम क्यों जाता है, क्या हमको वहां से सुख लेना है ये देखना है। आरंभ परिग्रह पर से जिसकी वृत्ति खेद को प्राप्त हुई है, यानी इसका अर्थ क्या है कि उसे असार जान करके, सुख का कारण नहीं, इसमें कोई सार नहीं है, सार मैंने सुख, असार मैंने दुख, उसको असार जान करके उसके प्रति से जो जीव ओसरा है, इसमें भी ओसरा लिया है, हटा है वहां हटा ही लिया है,
पीछे हटा है,
ठीक है,
पीछे
पानी ओसरू एम कहवाय, પૂર આવે એમાં ભરતી આવીને ઓસરે છે, નદીમાં પૂર આવીને ઓસરે છે, આરંભ પરિગ્રહ પર છે જિસકી વૃત્તિ ખેદ પ્રાપ્ત ખેદ કો પ્રાપ્ત હુઈ હૈ ઓર ઉસકો અસાર જાન કરકે ઉસકે પ્રતિ છે જો જીવ પીછે હટે હૈ, यानी जिसके परिणाम जो है वो परीक्षण हो गए हैं, वे जीवों को सत्पुरुष का समागम और सत्शास्त्र का श्रवण विशेष करके हितकारी होता है, ऐसे जीव को तुरंत असर होती है। जिसको रस पड़ा है अंदर में आरंभ परिग्रह पर, एक एक चीज को अच्छी से अच्छी रखना, ठीक रखना, बराबर रखना, कहीं भी अपने को, अपनी आदत को, अपने परिणाम को प्रतिकूल हो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, एक खिली भी हम चाहे वहां रहनी होनी चाहिए। हाँ, और मकान की एक ईंट भी आगे पीछे होनी चाहिए नहीं, ये कल्पना की, कल्पना का मकान है, इसमें एक ईंट भी आगे आगे पीछे होनी नहीं चाहिए। ये
चिकनापन,
ये चिकनापन है उनको सत्श्रुत का जो श्रवण है और सत्पुरुष का समागम है, उनकी असर पहुंचती
नहीं,
असर नहीं होगी, सुनेगा बात की असर नहीं होगी और फिर अपने उदय में लग जाएगी परिणाम। रोज सुनना और सुन करके चले जाना और उदय में घुस जाना, फिर दूसरे दिन श्रवण करने को आना, फिर वो की वो घटना। क्या करते हो ये कोई सुनने का ढंग है नहीं, ये तो मुका हो जाएगा, सुनने का दुष्ट अभिमान होगा कि हम सुनते हैं, हमको मालूम है, हम जानते हैं, ये दुष्ट अभिमान हो जाएगा। जो जीवों को सत्पुरुष का समागम और सत्शास्त्र का श्रवण, ऐसे जीवों का, कैसे जीवों को, जिसकी वृत्ति आरंभ परिग्रह पर पकड़ वाली नहीं है, चिकना परिणाम नहीं है, उनको असर होता है, उनको हित होता है, हितकारी होता है वो। आरंभ परिग्रह पर विशेष वृत्ति वर्तती हो, वह जीव में सत्पुरुष के वचन का अथवा सत्शास्त्र का परिणमन होना कठिन है, क्योंकि परिणाम तो रस वाले चलते हैं, उल्टा रस वाले। पुद्गल के रस वाले परिणाम चैतन्य का रस चढ़ने देगा नहीं, गुरुदेव तो वहां तक कहते थे ये पुण्य का रस है, तुमको पुण्य और पुण्य के फल का रस है, और एक सूक्ष्म का रस होगा तो भी तुमको अनुभव का रस आएगा
नहीं,
क्योंकि बाह्य पदार्थ है। ज्ञान का सूक्ष्म से लेकर के पुण्य और पुण्य का उदय, ये बाह्य तत्व है, अजीव तत्व है, अजीव तत्व का रस लेगा तो जीव का रस, अनुभूति का रस, अध्यात्म का रस आएगा नहीं, ये रस चढ़ेगा नहीं, विरुद्ध रस पर ये रस चढ़ेगा
नहीं,
नहीं।
जड़ी
है, वो क्या जड़ी है और क्या है। आरंभ परिग्रह पर से वृत्ति फीकी करने का और शास्त्र के परिचय में रुचि करने का प्रथम तो कठिन लगता है, तो जीव उस लाइन पर नहीं आया है उनको प्रथम कठिन लगता है कि ये बात हमारे लिए तो बहुत कठिन है, हमारे परिणाम देखते हुए ये बात तो हमको कठिन लगती है, क्योंकि जीव का अनादि प्रकृति भाव उसका उससे जुदा मैंने विरुद्ध पड़ता है, इसकी प्रकृति तो पारंपरिक में जाने की है, तो भी जिस जीव ने ऐसा करने का निश्चय किया है वो वैसा कर सके हैं, इसलिए विशेष उत्साह रख करके ये प्रवृत्ति कर्तव्य है। कठिन लगेगा शुरू में, शुरू में तो गाड़ी पटरी पर आना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन निर्णय जिसने किया कि नहीं हमको आत्महित कर लेना ही है, जैसे कैसे भी कोई भी कीमत पे करना है, कोई भी कीमत लग जाओ तो लग जाओ, करना ही है, वो कर सके हैं और इस ऐसे विषय में उत्साह से उल्लासित वीर्य से काम करना चाहिए। सर्व मुमुक्षुओं को देखो, ये पत्र सुभाग भाई के परिवार पर है, लेकिन सर्व मुमुक्षुओं को यह बात का निश्चय और नित्य नियम करना चाहिए, प्रमाद और अनियमित पिना को छोड़ देना चाहिए, उसमें न प्रमाद होना चाहिए। हाँ सही बात है, सर्व मुमुक्षु पर है, सर्व मुमुक्षु को ये लागू पड़ता है, ये बात है
ठीक।
नित्य नियम होना चाहिए और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिए, सत्संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए। अनियमित पूर्ण मैंने नियमित रूप से सत्संग में जाना चाहिए, तो उसमें कभी भी आ जाए ऐसा नहीं चले। एरोड्रम पर एक कलाक का एक घंटे का वो रखा है कि नहीं रखा है, हाँ रिपोर्टिंग टाइम, तो यहाँ रिपोर्टिंग टाइम 5-10 मिनट का तो रखो कम से कम, पूर्व तैयारी में आ जाए, परिणाम कुछ लाइन पे आ जाए।
देव